We are grateful beyond any measure of expression for teachers throughout the church.
We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं और हमें आप पर विश्वास है. आप पुनर्स्थापित सुसमाचार के महानतम उपहारों में से एक हैं. सुसमाचार का सफल शिक्षक बनकर परमेश्वर की शक्ति और अधिकार से सीखने के पीछे अवश्य ही एक भेद है. मैंने शब्द भेद का उपयोग किया है क्योंकि जिन सिद्धांतों पर एक शिक्षक की सफलता निर्भर करती है केवल उनके द्वारा समझी जा सकती है जिनके पास 1820 के बसंत की उस सुंदर सुबह को हुई घटना की गवाही है. 14 साल के बालक की विनम्र प्रार्थना के जवाब में स्वर्ग खुल गया था. अनंत पिता परमेश्वर का उनका पुत्र यीशु मसीह प्रकट हुए और भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ से बात की. चिर प्रतीक्षित सब बातों का सुधार आरंभ होने लगा था और प्रतिकरण की रीति हमारे युग में हमेशा के लिए स्थापित की गई थी. संसार के लिए जोसेफ स्मिथ के संदेश और हमारे संदेश को इन शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है. परमेश्वर बातचीत करता है. उसने अतीत में बात की थी. उसने जोसेफ से बात की थी और वह सिखाते समय आपसे बात करेगा. ये बात आपको संसार के अन्य शिक्षकों से अलग करती है इसलिए आप असफल नहीं हो सकते हैं. आपको भविष्यवाणी और प्रकटीकरण की भाषा और पुरोहित्य अधिकार द्वारा नियुक्त किया गया है. इसका क्या अर्थ है? पहला, इसका अर्थ है कि आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं. आप उसके प्रतिनिधि हैं और उनको आपका प्रतिनिधि और उसके स्थान पर काम करने का अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है. उसके प्रतिनिधि के रूप में आप उसकी सहायता पाने के अधिकारी हैं. आपको अपने आप से पूछना चाहिए, यदि आज मेरी शिक्षा को उद्धारकर्ता सिखा रहा होता तो क्या कहता और इसे कैसे कहता. आपको वैसा ही करना चाहिए. इस जिम्मेदारी के लिए लोग अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं या कभी कभी भयभीत भी हो सकते हैं. ये कार्य कठिन नहीं है. प्रत्येक योग्य लैटर सेंट को उद्धारकर्ता के तरीके से सिखाने के लिए प्रभु ने मार्ग तैयार किया है. दूसरा, आपको यीशु मसीह के सुसमाचार को सिखाने के लिए नियुक्त किया गया है. आपको अपने विचारों या अवधारणाओं को नहीं सीखना चाहिए ना ही इन्हें धर्मशास्त्रों से मिलाएं. सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है और केवल सुसमाचार के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं. तीसरा उनको उन सुसमाचार के सिद्धांत सिखाने की आज्ञा दी जाती है जो धर्मशास्त्रों से हमारे समय के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के वचनों से जो पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया है उसे सीखना. तो हम कहाँ से आरंभ करें? इस प्रकार का जीवन जीना हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम पवित्र आत्मा को अपने मार्गदर्शन और साथी के रूप में प्राप्त कर सकें. जब हायरन स्मिथ ने अंतिम दिनों के कार्य में भाग लेने की इच्छा जाहिर की तो प्रभु ने उससे कहा था कि तन मन और शक्ति से उसकी आज्ञा का पालन करना उसका कार्य था. यहीं से आरंभ करने की जरूरत है. प्रभु द्वारा हायरन ने दी गई सलाह वही सलाह है जो प्रत्येक युग में संतों को देते आए हैं. शिक्षकों के बारे में बोलते हुए प्रथम अध्यक्षता ने कहा था, आपकी प्रतिदिन की आत्मिक तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रार्थना, धर्मशास्त्र अध्ययन और आज्ञाओं का पालन है. हम आपको पहले से ही कई उद्देश्य के साथ सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए कटिबद्ध होने के लिए उत्साह करते हैं. ये महत्वपूर्ण है कि प्रथम अध्यक्षता ने यह नहीं कहा कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए पाठ को अच्छी तरह करना सीखने की विभिन्न विधियां जरूरी होती हैं. अवश्य ही आपको प्रत्येक पाठ को परिश्रम से तैयार करना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए कि आप कैसे सिखाएं ताकि आपके विद्यार्थी उनकी सुनने की स्वतंत्रता का उपयोग करें और सुसमाचार को उनके हृदय में दाखिल होने दें. लेकिन आपकी सेवा से सबसे पहले महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी व्यक्तिगत आत्मिक तैयारी है. आप जब इस सलाह का अनुसरण करते हैं, प्रथम अध्यक्षता ने वादा किया है, पवित्र आत्मा आपको जानने में मदद करेगा कि क्या करना है. आपकी स्वयं की गवाही का विकास होगा, आपका परिवर्तन गहरा होगा और जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको बल मिलेगा. शिक्षक किन आशीषों का आशा कर सकता है? आगे प्रभु ने आगे दी है कि इससे पहले कि हम उसके वचन की घोषणा करने का प्रयास करें, हमें इस प्राप्त की करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। आपको परिश्रम से धर्मशास्त्र में खोज करते हुए और इन्हें अपने हृदय में संजोकर रखते हुए अधिक समझदार पुरुष और महिला बनना चाहिए। फिर जब आप प्रभु की मदद मांगते हैं तो वह आपकी आत्मा और वचनों से तुम्हें आशीषित करेगा। पौलुस हमें सिखाता है कि सुसमाचार मनुष्य के पास दो तरीके से आता है, वचन में और सामर्थ्य में। सुसमाचार के वचन धर्मशास्त्र में लिखे हैं और हम वचन को परिश्रम से खोज कर पाते हैं। सुसमाचार का सामर्थ्य उनके जीवनों में आता है जो इस प्रकार जीवन जीते हैं कि पवित्र आत्मा उनका साथी होता है और वे उन प्रेरणाओं का पालन करते हैं जो उन्हें मिलती है, जो कुछ केवल वचन को पाने पर अपना ध्यान लगाते हैं और वे सूचना में माहिर बन जाते हैं। अन्य लोग तैयारी करने की अनदेखी रखते हैं और आशा करते हैं कि किसी प्रकार प्रभु कक्षा के दौरान उनकी मदद करें, और आप हम आशा नहीं करते कि आपको आत्मा उन धर्मशास्त्र और सिद्धांतों को याद करने में मदद करेगी जिनका अध्ययन या विचार आपने नहीं किया है। सुसमाचार को सफलता से सीखने के लिए आपके अपने जीवन में सुसमाचार के जीवन और सामर्थ्य दोनों ही होने चाहिए। आलमा ने वे बहुत ही समझदार थे और उन्होंने निष्ठापूर्वक धर्मशास्त्र में खोज की ताकि वे प्रभु के वचन को जान सके, परंतु यह सब कुछ नहीं था। उन्होंने प्रार्थना और उपवास किया, इसलिए उनके पास प्रतिकरण की आत्मा थी। आगे आपको सुनना और सीखना चाहिए। एल्डर हॉलैंड ने प्रचारकों को सिखाया था, मैं एल्डर हॉलैंड के विचारों को दोहराऊंगा, लेकिन मैंने प्रचारक और जांचकर्ता शब्दों के स्थान पर शिक्षा और विद्यार्थी शब्दों को बदला है। शिक्षकों के पास केवल आत्मा और सुनने की जिम्मेदारी के बाद दूसरी जिम्मेदारी विद्यार्थी को सुनना है। यदि हम आत्मिक कानों से सुनते हैं तो हमारे हृदय हमारे विद्यार्थी में हमें बताएंगे कि किन पाठों को उन्हें सुनने की जरूरत है। एल्डर हॉलैंड ने आगे कहा था, सच्चाई यह है कि अपने विद्यार्थी पर व्यक्तियों के तौर पर ध्यान एकत्रित करने के साथ एक शिक्षक अभी असुविधापूर्वक बार बार दोहराए जाने वाले पाठ को देने का केंद्र रहते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं को और पाठ को तैयार करने के बाद हमें पवित्र आत्मा को पाठ सिखाने देना चाहिए। जब पवित्र आत्मा की प्रेरणाएं मिलती हैं, हमें रेखांकित किए गए वाक्यों और विवरणों को एक तरफ रख देना चाहिए और जो आत्मा की प्रेरणा हमें बताती है उसे सीखना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाठ सीखते हैं और उसके पाठ ना होकर उद्धारकर्ता का पाठ बन जाता है। जब आप स्वयं को सुसमाचार जीने की महान उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं और धर्मशास्त्र और अध्ययन करते हो, इन्हें अपने हृदय में रखते हो, तो यही पवित्र आत्मा जिसने प्राचीन काल में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर इन शब्दों को प्रकट किया था, इन शब्दों की सच्चाई पर आप प्रकट करेंगे, अर्थात पवित्र आत्मा इन्हें आपको नए सिरे से बताएंगी। जब ऐसा होता है तो जिन शब्दों को आपने अध्ययन किया है वे नफिया पोलुस या आलमा के शब्द नहीं रह जाते, परंतु वे आपके शब्द बन जाते हैं। फिर जब आप सिखाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सब बातों को सिखाएंगी और सब बातें आपको स्मरण कराएंगी। जब ऐसा होता है तो उसी क्षण स्वयं जान जाओगे कि आपको क्या कहना है। यदि आप पर ध्यान देते हैं तो जो आप सीखते हैं उन बातों से आप भी कुछ सीखेंगे। अध्यक्ष मेरियन जी रोमनी ने कहा था, मुझे हमेशा पता है कि कब मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ मैं हमेशा उससे कुछ सीखता हूँ। अंत में जो आप सिखाते हैं आपको उसका स्वयं गवाही होना चाहिए, ना कि पुस्तकों के शब्दों को या किसी अन्य के विचारों को दोहराना चाहिए। जब आप मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं और सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए पहले से अधिक समर्पित करते हैं तो पवित्र आत्मा और आप पर प्रकट होकर बताएगी कि जो आपको सीख रहे हैं सच हैं। ये प्रकटीकरण की आत्मा है और यही आत्मा आपके संदेश को उनके हृदयों में ले जाएगी जो इच्छा रखते हैं और सीखना चाहते हैं। आओ हम वहां पर समाप्त करते हैं जहां से आरंभ किया था। पवित्र उपवन जो उस स्थान में उस सुंदर बसंत में की सुबह को हुआ था, उसके कारण आप परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार के साथ सिखाने के योग्य हैं। इसकी मैं अपनी पवित्रता और निष्पक्ष गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन।